आगे फरमाया, वद्द कसीर मिन अहलिल किताब, चाहते हैं बहुत सारे अहले किताब में से क्या, लव यरुद्दूनकुम, काश तुमको फेर दे। कुम कौन है? तुम मुसलमान। कुम तुम, इसको इसी तरह याद कर ले, कुम तुम। जितने कुरान पाक में कुम आए आपको उसका तर्जमा याद हो गया। टेस्ट देना मुश्किल तो नहीं है ना? कुम तुम, ना हम, ना हम, कुम तुम। इनके साथ खेला करें थोड़ी सारी जमायर के साथ। हाँ, तो कहा तुमको फिरा दें। कुम कौन है? मुसलमान। कब? मिम बादी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद। किधर ले जाएं फिर के? कुफारन, काफिर बनाकर। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला खबर दे रहे हैं अल्लाह के नबी के मुखलिस सहाबाए कराम को कि देखो ज़रा मुख्तात रहना, ये अहले किताब जो खुद तो रुके, अब इनको तुम्हारे हाथों में ईमान अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे दिल ईमान के नूर से चमके हुए इनको अच्छे नहीं लगते, ये तुम्हें इस्लाम से, ईमान से कुफर की तरफ लाना चाहते हैं। एकदम एक सवाल उठता है, वाह क्यों? ऐसे जैसे आप अपने बच्चे को समझाएं कि देखो फलां से मुख्तात रहना, वो तुम्हारी फलां नेमत छीनना चाहता है, वो उसका दिल अकेला रहे, तो वो फौरन सवाल करेगा क्यों? तो अल्लाह ने उस क्यों का जवाब दिया, हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, इनके दिनों में हसद है। इसको आप कर लें ब्रैकेट्स में, हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, ये असल में वजह बताई गई, इल्लत है। तुम्हें ईमान से कुफर की तरफ क्यों लाना चाहते हैं? इनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हासिद को कुछ नहीं मिलता और हासिद को कुछ लेना नहीं होता, बस उसकी एक तमन्ना होती है कि इसके हाथ से चला जाए। देखिए मुख्तलिफ दर्जे हैं, एक होता है रश्क, आपको मिले मुझे भी मिल जाए, ऐसा रश्क जायज़ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हसदा इल्ला फिस्नतैन, हसद जायज़ नहीं मगर दो में। ये कौन सा हसद है? रश्क। एक वो शख्स रजुलुन जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो दिन रात अल्लाह के दीन पे खर्च कर रहा है, उस पे रश्क करो कि अल्लाह मुझे ऐसा कर दे, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने इल्म और हिकमत दी और वो उसको लोगों को दे रहा है, इस पे तो हसद कर लो, इसके अलावा दुनिया की किसी और चीज़ पे हसद नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो रश्क की हद तक तो जायज़ है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो इसको मिला है, पहला मैंने क्या बताया कि जो आपके पास है वो मुझे भी मिल जाए, ये फर्स्ट स्टेप होता है हसद का, ये पहला दर्जा है और ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर ये ना हो तो दुनिया में तरक्की रुक जाए, प्रोग्रेसिव होना कहते हैं आप इसको। दूसरा दर्जा क्या होता है कि जो आपको मिला है वो आपके पास ना रहे और मुझे मिल जाए, ये दूसरा दर्जा है कि आपसे छीने और मुझे मिले, मुझे यही चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना, यही कप लेना है, माँ उसी के साथ का मैचिंग कप निकाल के अलमारी से कहती है बेटा ये ले लो, कहते नहीं ये वही लेना है जो भाई के हाथ में है। हुआ कभी ऐसा? बस ये कौन सा दर्जा है कि नहीं जी हमें तो आपका ही चाहिए। अब ये दूसरा दर्जा आ गया, इसमें बुराई बढ़ गई ना, ये नैरो माइंडेडनेस होती है, कुछ लोगों को फोकस कर लेते हैं, हमें यही चाहिए। अच्छा, तीसरा दर्जा क्या है जो बहुत ही वर्स्ट किस्म का है, ये आपके हाथ में है ना, ये मुझे मिले ना मिले लेकिन आपके हाथ से गिर के टूट जाए, मुझे इससे कोई केयर नहीं, मुझे मिले ना मिले बस आपके पास ना रहे, ये है बदतरीन दर्जा। और ये हसद था मदीना वालों को मुसलमानों से, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, उनको तो नहीं इस्लाम चाहिए था। देखिए अल्लाह के नबी आए, क्या उनको अल्लाह के नबी चाहिए थे? उन्होंने तो अपना आप खोल के रखा था कि आओ ले लो मुझे, नहीं लिया ना, वो अल्लाह के नबी को नहीं चाहते थे, वो इस्लाम को नहीं चाहते थे, वो ये भी नहीं चाहते थे कि तुम्हें मिला हमें भी मिल जाए, पहला दर्जा भी नहीं था, बर्दाश्त ही नहीं किया उन्होंने तो, इसको कबूल ही नहीं किया कि अल्लाह के नबी को भी मिल जाए वही मुकाम जो हमें मिला, चलो ख़त्म। दूसरा ये कि आपसे छीने और हमें मिल जाए, ये भी नहीं चाहते थे, चाहते क्या थे कि आपका ख़त्म हो जाए। 8 साल जो मदीना के थे, 10 साल में से ख़ास तौर पर शुरू के, इसकी बेशुमार मिसालें मिलेंगी। क्यों करते थे? हसद मिन इंदी अनफुसिकुम मिम बादी मा तबय्यन लहुमुल हक, ये है अल्लाह ताला का तबसरा। हैरत, अफसोस इनके हाल पे कि देखो ये इतने नेगेटिव जज्बात कब है इनके दिल में, इनके भोलपन की वजह से? नो, इनकी जहालत की वजह से? नो, बल्कि हक को वाज़े तौर पे देख लेने के बावजूद इनके दिलों में इतने गंदे जज्बात हैं। इनको पता है ये सच है, वो सारी दुनिया को कहेंगे ना ये गलत है, उनके दिल अंदर से उनको कहेंगे ये सच है। और दुआएं अंदर से अपने बच्चों के लिए शायद वो यही कर रहे होंगे कि अब हम तो इन नेगेटिव जज्बात में आके इस नबी की मुखालफत करें, लेकिन अल्लाह हमारे ही बच्चों में किसी को भेज दे और वो इस नबी की तालीमात हासिल कर ले। दिल में ये जज्बात होंगे लेकिन ज़ुबान से ज़ाहिर नहीं करते। अच्छा, अब जब ये सारा कुछ पढ़ता है इंसान तो एकदम खून खौलने लगता है। मुसलमान जब पढ़ते हैं, अच्छा इतना कोई हमारे खिलाफ़ है? ज़रा आप इस आयत को महसूस करें, आप दीन पे है ना, तो इसको इतना महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि अभी दीन हमें भी इतना प्यारा नहीं हुआ। आपको शक पड़ जाए कि कोई आपकी मनपसंद चीज़ लेना चाहता है, उसकी नज़रें हैं आपके ऊपर उस चीज़ पे कि इससे छीनना मैंने, क्या होगा आपका हाल? मुतमईन होंगे? मनपसंद चीज़ों में मोस्टली जेवर, कपड़े, जूती, उस पे मैंने देखा है इतनी फिक्र नहीं होती, हमें पता तो शौहर और दिला देंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, बीवी को पता चल जाए कि कोई दूसरी औरत मेरे शौहर पे नज़रें रखी हुई है, अब कहाँ गए जेवर? वो तो शौहर ही जा रहा है, बेचैनी होती है कि नहीं? शौहर, हालांकि अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, किसी को शक पड़ जाए कि मेरे बच्चे को कोई मेरे से खिलाफ करके अपने हाथों में लेना चाह रहा है, चैन आएगा? तो जब दीन कोई, हिदायत कोई, हमारा इस्लाम, हमारी बेहतरीन चीज़ें कोई छुपी छुपी चीज़ों से लेना चाहता है, तो हम कितने मुतमईन होके बैठे होते हैं, क्योंकि अभी पता ही नहीं ना कि वो दीन है क्या, वो नेमत है क्या जो अल्लाह ने दे दी। कभी बिन मांगे दे देता है अल्लाह, कभी मांगने से देता है। अब कहा ये सारी बातें इनकी अंदर की सुन के तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए? गुस्सा करो? नो, फाफू वस्फहू हत्ता याती अल्लाहु बि अम्री। और अगर डिक्शनरी में इससे ज़्यादा लफ्ज़ होते ना, तो अल्लाह ताला वो भी लिख देते माफ़ी के। फाफू, जाने दो, अफवन कहते हैं, इट्स ओके, लीव इट, लीव इट, अफ ज़्यादा ज़रूरत को कहते हैं ना, जाने दो। और वस्फहू कहते हैं, जैसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं ना, मट्टी डालो, जाने दो, ये सफ़ुन इसको कहते हैं, आपकी जो पाम होती है ना हाथ की, हाथ की जो हथेली है, इसको सफ़ुन कहते हैं। ये जो सफ़े आप पलट रहे हैं ना, वो भी इसी से ही हैं। अच्छा, करते कि आप सफ़े को आप एक सुना, फिर आगे डाला, पलटते जाते हैं ना, तो उसमें भी पलटने का मानी है, यानी इस मामले को तूल ना दो, इंतज़ार करो, मुनासिब वक्त का इंतज़ार करो। कब तक? तयाती अल्लाहु बि अम्री, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला ले आए, अल्लाह ताला अपना अमर ले आए, अपना हुक्म ले आए। ये कौन सा फ़ैसला था? मुसलमानों की फ़तह का, इस्लाम के गलबे का, मक्का के फ़तह होने का, इस्लाम का पैगाम घर घर में पहुंचने का, और इनके ऊपर अजाब का फ़ैसला, इनकी पकड़ का फ़ैसला, इनको कैफरे किरदार तक अल्लाह पहुंचाएगा, इसका तुम बस फ़ैसला करो, और अल्लाह ऐसा ज़रूर करेगा, क्योंकि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। वो नए नए सर उठाने वाले मदीना में, जब उन्होंने ये बात सुनी होगी तो उन्होंने कभी सोचा था कि एक ऐसा भी वक्त में आएगा कि मदीना में ये लोग नापैद हो जाएंगे जिनका यहाँ तذकरा है? चले, वो तो नापैद हुए, किसी ने उस दौर में ये सोचा था कि क़यामत तक कोई गैर मुस्लिम मक्का और मदीना की हदूद में नहीं आ सकेगा? कोई सोच सकता था? ये तो ऐसी है कि आज किसी बहुत बड़े जालिम के बारे में कोई ये सोचे कि कल वो अपने घर में कदम नहीं कभी रख सकेगा, कोई बड़ी ताकत है और वो अपने ही मुल्क में दाखिल ना हो सके, उस वक़्त नहीं यकीन आया। और आज देखिए कितनी बड़ी सदाकत है, अल्लाह ताला आपको लेके जाए, जब आप जाते हैं हज या उमरे के लिए, तो जद्दा से मक्का आते हुए एक ऐसी जगह आती है कि वहाँ एक ऐसे रास्ता सा बना हुआ है, दरवाज़ा, और उसके ऊपर कुरान है, रहल सी बनी हुई है, एक सिंबल है, ये वो जगह है कि जिसके आगे हरम की हद शुरू होती है, और वहाँ साथ ही एक साइड पे एरो लगा होता है और लिखा होता है कि इस हद से आगे अब नॉन मुस्लिम्स नहीं जा सकते। इतना रोना आता है उस वक्त, यकीन करें हमने तो इस ईमान के लिए कोई कुर्बानी दी नहीं, लेकिन उस वक्त इंसान कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, इधर से अब हमें यहाँ नहीं कहा के जाना है, तो इधर से पलट जाओ, ये मेरे पाक घर है, मेरी जगह, तुम यहाँ ना हो। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, जो लोग अल्लाह के इन फ़ैसलों पे यकीन नहीं करते ना, वो अल्लाह की मदद के मुस्तहिक भी नहीं होते। मुसलमानों से कहा छोड़ो इनको, इनके हाल पे मत करो इनकी बातें, कुछ ना को। और ये बिल्कुल इब्तदाई दौर था मदीना की ज़िंदगी का, अभी बहुत सारे तसादुम होंगे, बड़ी कशमकश चलेगी, अभी तुम इतने मज़बूत नहीं हो, अभी मक्का वाले तुम्हारे वहाँ से निकल के आने पे बड़े बिफरे हुए हैं, अभी उन्होंने तुम पे बदर के वार करने हैं, अभी खुद की जंग आनी है, अभी यास्तीन के सांप है, इनको ना छेड़ो, इनको सोने दो। अगर उस वक्त में यहूद से भी लड़ाई ले ली जाती ना, तो मुसलमान बहुत ज़्यादा मुश्किलों में आ जाते। यहाँ से इस्लाम का मिजाज समझ आता है, रिएक्शनरी ना बनो, तुम मुकाबले पे मत आओ, तुम अपना काम करते जाओ, रास्ता निकल जाएगा। तसादम की पॉलिसी अख्तियार ना करो, किसी के आमने सामने आके इस तरह की मुखालफत ना ले लो कि सारी एनर्जी तुम्हारी उसी को पूरा करने के लिए लग जाए और जो असल काम है वो रुक जाए। बल्कि करो क्या, इनके साथ मुआफ़ी का इंतज़ाम करो और अपने हाल में क्या करो, वो काम करो जो अल्लाह की मदद को बुलाते हैं। अभी अपनी तो इसलाह करो, तुमने यहूद और नसारा को क्या कहना है मुसलमानों, अभी तो तुम खुद नमाज भी नहीं पढ़ते, इसलिए वाकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज़ें पढ़ के ज़कात दो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, और जो तुम अपने आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए उसको पालोगे अल्लाह के रास्ते में, यानी खर्च करो, दिल खोलो इस्लाम के लिए। है रब कुरान पाक में कि नहीं? आप जब कुरान पाक का अगला रुकू होता है ना, उसको पहले घर से देखा करें, लिटरली इस रुकू को आप बिल्कुल बग़ैर देखेंगे ना चीज़ों के, तो आप कहेंगे आज तो इतनी अपोजिट चीज़ें हैं, कहाँ से बात यहूद की आई, कहाँ रायना की बात आई, कहाँ सवालों जवाब की बात आ गई, फिर कुफर की बातें आ गईं, बीच में अच्छा आज हसद की बात है, कुछ माफ़ी है, और देखो आगे अब नमाज रोज़े की बातें। लिहाजा नाउज़ुबिल्लाह कुरान में तो कोई रब्त ही नहीं है, बहुत कंट्राडिक्शन है। नहीं, मुसलमानों को कहा जा रहा है कि अल्लाह के बंदो पहले नमाज़ें पढ़ो, देखो अल्लाह की मदद किन लोगों पे आती है। तुम्हारी अपनी नमाज़ें जा रही हों और तुम नॉन मुस्लिम के ख़िलाफ़ मीटिंग कर रहे हो, वो मीटिंग तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं देगी। तुम कभी दुश्मनों को ज़ेर कर ही नहीं सकते जब तक तुम अल्लाह के सामने ज़ेर नहीं हो जाते। कोई तुम्हारे आगे आजिज़ होकर नहीं झुकेगा अगर तुम अल्लाह के सामने आजिज़ नहीं हो। कोई तुम्हें दीन के लिए पैसे नहीं देगा जब तक तुम अपना पैसा अपना माल अल्लाह के रास्ते में खुद नहीं लगाते। इन अल्लाह बिमा तामलून बसीर, और जो तुम करते हो अल्लाह उसको खूब देख रहा है। अल्लाह लीडर्स को बता रहा है कि देखो जो बातें दूसरों से कहलवाते हो ना, वो खुद भी तो करो। बस दफ़ा हम चाहते हैं दूसरे अपना सब कुछ दे दें और हम अपना कुछ भी नहीं देना चाहते। कहा नहीं, वमा तुकद्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, तुम भी तो लाओ अपनी आगे। तुम लोगों के लाए हुए कोई खाना चाहते हो, तुम उनसे ही मांग मांग के अपने गुजारे करना चाहते हो, तुम्हें यकीन नहीं है कि दूसरा खर्च करता है तो उसको भी सवाब है, तो तुम भी तो खर्च करोगे तो अल्लाह ही के पास आएगा। और जब मैं इस आयत को पढ़ती हूँ ना कि तजीदू हुइंद अल्लाह, तो यकीन करें कि तस्वुर में मेरे क्या आता है, आपके भी आता होगा कुछ ना कुछ, हर बंदे का एक डिफरेंट इमेजिनेशन होता है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपके पास बहुत सामान था, उठाए उठाए थक रहे थे, फिर रहे थे, जो ही आप एयरपोर्ट पहुंचे आपने जहाज़ वालों को दे दिया, उन्होंने टैग्स लगा के आपके हाथ में दिए, आपका सारा सामान ले लिया, आप हैंड फ्री हो गए, जहाज़ में गए, रास्ते में फिरे, और जो ही अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे आए तो वो सारा सामान आपको बेल्ट पे मिलता जाता है, आप वो सूटकेसेस उठाते हैं और खुशी खुशी बाहर जाते हैं। यही हाल हमारे माल के साथ भी होगा, आज उठा उठा के फिर रहे हो ना तो बोझल है, दे दो उसको। तजीदू हो क्या करो, तो कद्दीमू लिया, तुम अभी इधर हो, सामान पहले बुक करो, कुछ नहीं जब जाना होता है तो सामान ज़्यादा होता है ना, तो अपने से पहले ही बुक करा देते हैं ताकि हम जाएं तो वहाँ पहुँचाओ, कार्गो में करा दें या वट एवर करा दें, हैं। और जब जाएंगे तजीदू हो इंदल्ला, अगर हमें इसका यकीन ना हो कि जो हम सामान दे रहे हैं वो हमें मिलना नहीं वापस, तो कितने लोग हैं जो अपना सामान दें, अपनी कितने हफ्तों क्या महीनों की शॉपिंग दे दें लोगों को, हैं, वो सर पे उठा के फिर लेंगे। लेकिन मुझे याद आ गया, अभी हम किसी कुछ रिसेंटली किसी ट्रेवलिंग में थे, तो आपको पता है कि हैंड कैरीज जो होते हैं तो वो साथ जाने की इजाज़त होती है, तो जहाज़ के अंदर जाने के लिए लाइनें लगी हुई थी, छोटा सा जहाज़ था, कोई ऐसी छोटी फ्लाइट थी, तो हैंड बैग्स थे, तो एक बुज़ुर्ग थे माशाल्लाह, तो उनके पास काफ़ी बल्की किस्म का मोटा सा हैंडबैग था, थैला था, और बड़ा भारी था। तो अमूमन छोटी फ्लाइट्स वाले जो है ना, वो इवन हैंड कैरीज भी आपके खुद ही ले लेते हैं, छोटे टैग देते हैं कि आपको वहाँ मिल जाएगा। जहाज़ के मैनेजमेंट वाले जो भी वहाँ उनके स्टाफ के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि बुज़ुर्गों, उर्दू ही बोल रहा था वैसे भी वो ना, तो कहा कि बुज़ुर्गों ये इधर छोड़ दो, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो वो बाबा जी कह रहे, ना मैं चोली च रख लांगा। अब आप में से पता नहीं कितनों को ये समझ आएगी, मैं अपनी चोली, उन्होंने कहा बाबा जी बुजुर्गों थे जगह नहीं है जहाज च। तो कहते ना जी ना, मैं अपनी गोद विच रख लांगा, तुसी मैनू उत्ते लैन जांदे हो। तो यहाँ तो चोली में रख रख के फिरना चाहते हैं ना, तो वहां तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तजिदूहु इंदल्लाह, इन अल्लाह बिमा तअमलून बसीर। इसकी कदर तो वो बंदे से कोई पूछे जो खाली हाथ दुनिया से जा रहा होता है, कुछ भी साथ नहीं जाता, और वही जाएगा जो अपने हाथ से छोड़ेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यकूल उल अब्दू माली माली, बंदा कहता रहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसके माल में तो सिर्फ 3 माल उसके हैं, जो खा लिया और जिस्म से गंदगी बन के निकल गया। यानी खाते हैं तो कोई टेस्ट आ जाता है, मज़ा आता है, इंजॉय कर लेते हैं, पहन लिया और चीथड़े बन के जिस्म से उतर गया, और तीसरा जो अपने हाथ से अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया, यही कल उसको मिलेगा। इसके अलावा बाकी सब कुछ तो वारिसों का है। कौन है जिसको अपने वर्षा का माल अपने माल से ज़्यादा प्यारा हो? कहा कोई भी नहीं। तो कहा जो तुम्हारे पास है ये तो तुम्हारे वारिसों का है। कुछ बेचारे तो खुद खाते पीते भी नहीं है, जमा ही करते रहते हैं, और बाद में लोग उनकी चीज़ें देख के रोते हैं कि हाय इस्तेमाल ही नहीं की इन्होंने और चले गए। बस लोगों को सिर्फ जमा करने का शौक होता है। अपनी अलमारियों को चेक किया करें, अपने घर के एक एक कोने को देखें, जो इस्तेमाल हो रहा है ना इंशाल्लाह खैर है। बर्तन है, कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, जो चीज़ आपकी इस्तेमाल हो रही है ना इंशाल्लाह, नेकियां करते जाएं, उसके हिसाब अल्लाह लेता जाएगा साथ साथ। लेकिन हर वो चीज़ जो आपने छुपा छुपा के और रखे और ख़ुद भी नहीं हौसला बढ़ता, और मियाँ बेचारे को तो कभी देते ही नहीं है उसमें खाना, कि नहीं ये तो मेहमानों के लिए है, कहते हैं ये मेहमानों वाले बर्तन है, घर वाले सिर्फ इसको देखा करें, जिसने ख़रीदा था उसको भी नहीं देते हैं। फिर कहते हैं घर आते हैं मियाँ का तो मूड अच्छा नहीं होता, किसी के घर जाते तो बड़े फ्रेश होते हैं। अल्लाह अकबर, इन अल्लाह बिमा तअमलून बसीर। फिर आगे उनके तासुब की बात है, और मुझे लग रहा है पूरे पारे में शायद ये अभी तीसरी दफ़ा आई है, और अभी इसके बाद मैं आज नोट्स देख रही थी तो आखिर में फिर यही टॉपिक आ रहा है, जो उस दौर का उनका मसला था। देखते हैं क्या, वकालू, और उन्होंने कहा, लई यदखुल अल जन्ना, हरगिज़ नहीं दाखिल होगा जन्नत में। यानी कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता जिसको अपनी ज़ुबान में आप कह लें कि जुमला हकूक महफूज है, हमारे सिवा जन्नत में कोई नहीं जाएगा। हाँ मगर इल्ला, कौन जाएगा? अगर किसी को जाना है तो क्या करे? मन काना हूदन, वो यहूदी बने, हमारे गिरोह में आए। जन्नती होने का मतलब यह है कि हमारे गिरोह से हो, और दिल चाहे तो अपने नाम गिरोह का नाम ही जन्नतियों का रख लें, कि जन्नत वालों का यही गिरोह है। यहूद ने कहा, यहूदी होना पड़ेगा, या फिर औ नसारा। ये किसने कहा? क्या यहूद ने कहा कि यहूदी या नसरानी बन जाओ? बाजार यही लग रहा है, हालांकि ऐसा नहीं। वह कालू में दो छुपे हुए हैं, यहूद और नसारा। कहाँ हुआ था ये? इससे अगली आयतें, और ये सारी आयतें बेसिकली एक ही सोच की हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान से एक वफद आया जो नसारा थे, क्रिश्चियंस थे, इस्लाम की कुछ बातें सीखने सुनने के लिए आए। मदीना में जब वो आए, यहूद को भी पता चला कि नसरानी आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ये आए हैं, हम भी चलते हैं। दोनों वहाँ गए और दोनों की आपस में झड़प हो गई। अगली आयत की शान नज़ूल है, लेकिन ये बिल्कुल वही मज़मून है। हुआ क्या कि यहूद ने ये दावा कर दिया कि देखो जन्नत में जाना है तो यहूदी बनना पड़ेगा, और नसारा ने कहा तुम कैसे कहते हो यहूदी बनना पड़ेगा, बल्कि औ नसारा, तुम्हें तो नसरानी बनना पड़ेगा। ये दोनों की बात थी। ऐसे ही है ना कि एक कह के ये बन जाओ तो जन्नती हो, दूसरा के वो बन जाओ तो जन्नती हो। अल्लाह ताला कह रहे हैं इन दोनों की इन बातों पे, तिल का अमानी यूहूं, दोनों की बात गलत है। ये तो इनकी आरजू है, क्या है इनकी अमानी? उम्मीदिया से पीछे गुजर गया ना लफ्ज, झूठी उम्मीदें आरजुएं तमन्नाएं। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने तो नहीं ये कहा, जन्नत मेरी जगह है, मेरा घर है, मैंने तो इनको नहीं कहा कि जन्नत में जाने के लिए या तो यहूदी कहलाओ या नसरानी कहलाओ, बल्कि ये इन्होंने खुद ही फैसले कर लिए हैं, खुद साख्ता फैसले कर लिए हैं कि जन्नत में कौन जाएगा। इनसे कहो क्या, कुल हातु बुरहानकुम, ले आओ अपनी दलील, अपनी सनद लाओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। बात समझ में आ गया, टेक्स्ट समझ आ गया ना। यहूदी कहने लगे जन्नत में जाना है तो यहूदी बनो, नसारा ने कहा कि जाना है जन्नत में तो बस नसारा बन जाओ। यहाँ ये बात समझ लीजिएगा कि यहूद और नसारा इस्लाम के आने से पहले आपस में बहुत लड़ते थे, बड़ी इनकी लड़ाइयाँ होती थी, इनकी मजहबी जंगें तारीख में शवाहिद देखें। लेकिन इनका इत्तेहाद और इत्तेफाक हो गया कब, जब इस्लाम आया। किस कीमत पे हुआ, इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पे हुआ। देखिए अरबी जबान में एक जुमला है जो बोल देती हूँ कि आपका दोस्त है, ठीक है, जो आपकी दोस्ती है जिससे, वो आपका दोस्त है। दूसरा असूल याद रखिए, क्या आपके दोस्त का दोस्त भी आपका दोस्त है, आपकी सहेली आपकी सहेली है, आपकी दोस्त की जो दोस्त है वो भी आपकी दोस्त होगी, और तीसरा आपके दुश्मन का, बताइए, आपके दुश्मन का दुश्मन भी आपका दोस्त होगा। नहीं, वो उसकी दुश्मनी में आपको फायदा देगा कि इसको आप नुकसान दें मेरा कुछ फायदा हो ना हो, ये असूल यहाँ पे लागू हो रहा है। ये दोनों अलग अलग थे, बट एवज चूंकि जो दो लोग होते हैं उनको और तीसरा मिलता ही नहीं, किससे लड़ें, वापस में लड़ते रहते हैं, खटपट खटपट लगी रहती है। फिर घर में कोई एक तीसरा फर्द आ जाता है तो वो दोनों मिल के महाज बना के उस तीसरे से लड़ने लगते हैं। इन दोनों गिरोहों ने यही किया, बहुत लड़ते भिड़ते थे, आपस में इख्तलाफात थे, बैतुल मकदस के एक हिस्से पे इनका कब्जा था, दूसरे पे उनका कब्जा था। एक को जब कब्जा मिल जाता तो वो दूसरे को एंटर ना होने देता, जब दूसरे को मिल जाता तो इसको एंटर ना होने देता। उनकी मजहबी इबादत गाहों में जाके वो कूड़ा डालते, ये उनकी डालते, अगली सारी आयतें इसी पे आ रही हैं। लेकिन जूं ही इस्लाम आया, कॉमन एनिमी आ गया ना, तो ये दोनों आपस में मिल गए। ये दुनिया में आज भी हो रहा है, सारे मुतफरिक गिरोह एक कॉज पे जमा होने को तैयार है। ये वही कॉज बता दी गई कि ये आपस में ये दावे करने वाले हैं, इनको बता दो कि तुम ये कहते हो कि तुम जन्नत में जाओगे, वो कहते हैं वो जाएंगे, हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, फिर ले आओ अपनी दलील, कहीं तौरात की आयत, कहीं इंजील की आयत, कि जिसमें ये लिखा है कि बस यहूदी होना जन्नती होना है, नसरानी होना जन्नती होना है। अच्छा, अब ये तो इनका दावा था ना, फिर कौन जाएगा, सवाल पैदा होता है ना। उसका जवाब अगली आयत में, बला, बल्कि यानी बट, आओ अब तुम्हें बताऊं कि जन्नत में जाने के लिए हूदन या नसारा बनना पड़ता है या क्या। फरमाया, मन असलम वजहहू लिल्लाह, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के आगे झुका दिया, ताबे हो गया, वहुवा मोहसिन, और वो मोहसिन भी हो, हुसन के साथ काम करने वाला, फलहू अजरुहू इंदा रब्बिहिम, बस उनका अजर है उनके रब के जिम्मे, वला खौफ़न अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना कोई उनको खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। सब की खुशफहमियों को ठंडा कर दिया कि जन्नत में जाने के लिए किसी को किसी गिरोह से या किसी नाम के साथ अपने आप को जोड़ना ही सिर्फ काम नहीं देगा, बल्कि असलमा, यहाँ लफ्ज़ गौर कीजिएगा कि वहाँ हूदन और नसारा था ना, तो यहाँ ये नहीं आया कि बला मन काला, या जो मुस्लिम, मुसलमान का लफ्ज़ भी नहीं आया, बहुत ही बारीक नुक्ता है। ये नहीं कहा कि यहूदी नसरानी नहीं जाएंगे बल्कि मुस्लिम जाएंगे, मुस्लिम नहीं जाएंगे बल्कि मन असलमा, जिसने अपने ऊपर इस्लाम को तारी किया। सलेमा, सुपुर्द कर देना, हैंड्स अप कर लेना, अल्लाह ताला के सामने अपने आप को छोटा कर देना, गिव अप कर देना, अल्लाह की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी बना लेना। ऐसे ही लोग जो हैं वो जन्नत में जाएंगे, और ये अल्लाह के हुक्म से जाएंगे, किसी के साथ किसी ज्याती नहीं होगी, ये लफ्ज़ जो हूद आना है ना, ये हाइद की जमा है, हाइद जो यहूदी बनेगा, और नसारा नसरानी की जमा है। और यहाँ जो बात कर दी कि मन असलम वजहहू लिल्लाह, इससे मुराद है अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपने आप को झुका देना। इस आयत में दो क्वालिटीज़ का तذکرہ है, हाईलाइट कर सकते हैं आप, असलमा और मुहसिन। यही है असल में पूरा दीन। एक है मुस्लिम हो जाओ अल्लाह के आगे, और मुहसिन क्या है, उस्वाए हसना को अपना लो। इन दो लफ्ज़ों में काल अल्लाह और काल रसूल पे अमल की बात है। बात किसको समझ आई? देखिए, किसी अमल की कबूलियत की दो शरायतें हैं, इखलास अल्लाह के लिए उस काम का करना, यानी लिल्लाहियत, उस काम को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए करना। और दूसरी उसकी सिफत क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे करना। जो शख्स सिर्फ़ इखलास की बुनियाद पे बढ़ता जाएगा ना, और इस तरीक़ों को रास्ते से निकाल दे कि आई डोंट केयर कि अल्लाह के नबी और सहाबा ने किया कि नहीं किया, देखो रिज़ल्ट कितने अच्छे हैं, देखो इससे फ़ायदा कितना हो रहा है। आज के दौर में मैं नाम नहीं लेना चाहती, एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है हम मुस्लिम्स में कि जो इस असूल पे काम कर रहा है। देखो अल्लाह का तकर्रुब तो मिल रहा है ना, अल्लाह के करीब तो हो रहे हो ना, तसव्वुफ के नाम पे कह लें, सूफीज़म के नाम पे कह लें, उनमें कोई ख़राबी नहीं आपको दिखेगी, उनके अंदर हर वो चीज़ होगी जिसे अल्लाह का कुर्ब पाले, मन असलमा, वो इबादत सारी चीज़ों को ख़ास तौर पे अपनी तज़किए पे बहुत बात करेंगे। ख़राबी कहाँ है? मोहसिन बनने की शर्त नहीं पूरी हो रही, नेकियों के खुद साख्ता मेयार। अल्लाह के नबी ने वो इस्तलाहत नहीं इस्तेमाल की, उन्होंने कर ली, अल्लाह के नबी के सहाबा ने वो सारे तर्ज़े तस्किया इस्तेमाल नहीं किए जो इन्होंने कर लिए, अमल कैसे जाएगा आगे? दूसरी तरफ आप सुबह और शाम सुन्नतों की बात करें, नबी की मोहब्बत सब कुछ करें, और आप लिल्लाहियत को निकाल दें, नबी को इतना आगे बढ़ा दें कि अल्लाह की ज़ात नीचे चली जाए, फिर भी कबूल नहीं होगा। एक बैलेंस दीन किसका है? मन असलम वजहहू वहुवा मुहसिनुन, जो मुस्लिम हो और मुहसिन हो। आज कितनों का नाम असलम होगा आप जानते हैं? कितना कॉमन नाम है, और कितने ही मुहसिन होंगे, क्या उनको अपने नामों का भी मतलब पता है? मेरे पास एक स्टूडेंट आती थी, क्लास के दरमियान ही अल्लाह ताला ने उम्मीद दी, प्रेगनेंसी से गुजरी, पूरा वक्त वो रहीं पढ़ती रहीं। उन दिनों में हम सूरह यूसुफ भी पढ़ रहे थे, फिर उसका बच्चा हुआ, बेटा हुआ, तो उसने उसका नाम मुहसिन रखा। कि इतनी कसरत से उसने ये चीज़ पढ़ी कि उसको पता चला कि मुहसिन होते कौन है। अब उसका बेटा माशाल्लाह मेरे हले 5-6-7 साल का हो गया, तो वो बच्चा बड़े फ़ख्र से कहता है आई एम मुहसिन। तो मैं उसको पूछा, मैंने कहा तुम्हें पता है हु मोहसिन? उसको सब कुछ पता है मोहसिन क्या होता है, उसके माँ ने सारी बातें सुनाई खाई हुई है कि अल्लाह मोहसिन से मोहब्बत करता है, और मोहसिन मोहसिन। जब छोटा था तो मैंने उसको गिफ्ट दिया, तो उस पर मैंने बाहर आयत लिख दी कि इन अल्लाह युहिब्बुल मोहसिन, जब अल्लाह युहिब्बुल मोहसिन, तो कहता है आई नो दिस आयत, छोटा सा। तो इतना उसको मज़ा आता है कि जब हम उसको मोहसिन कहते हैं, तो अल्लाह करे कि हम नाम रखते और नाम लेते हुए महसूस करें कि ये क्या है। कहा ऐसे लोगों को उम्मीद है कि वो जन्नत में जाएंगे, देखे नाम फिर भी नहीं है जन्नत का, देखे लफ्ज़ों को, आप अरबी के लफ्ज़ों में जाया करें। ये नहीं कहा कि मुसलमान हो जाओ जन्नत में जाओ, कहा मोहसिन हो जाओ बस फल हो जरू, आगे ना पूछो किधर जाएगा, ये मेरे ज़िम्मे है, अल्लाह के ज़िम्मे है। हाँ बस ये याद रखो कि फिर खौफ और हुज़्न निकलेगा। खौफ क्या होता है? मुस्तकबिल का, फियर ऑफ फ्यूचर, खाएंगे कहाँ से, बच्चों के रिश्ते कहाँ से होंगे, बीमार ना हो जाएं, गर्मी ना आ जाए, सर, ये खौफ है, अंदेशे। और हुज़न क्या होता है? माजी का गम, पिछले गमों में जीते रहते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी की गाड़ी में हमेशा बैक मिरर में ही देखते रहते हैं, 10 साल पहले कोई गम आया था, आज भी ऐसे ही दिल से लगा के रखा हुआ है, जाने ही नहीं देते। एक बच्चे का खुदा ना खास्ता गम मिल गया, जो 4 बच्चे अल्लाह की नेमत से मौजूद हैं उनकी कोई खुशी नहीं, जो एक चला गया उसी के गम में रोते हैं। अल्लाह को ऐसे लोग नहीं पसंद। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमें मुहसिन बना दे, मुस्लिम बना दे। यही दो चीज़ें हैं पूरे दीन की रूह। अल्लाह का बन जाओ, पूरे के पूरे अल्लाह के बन जाओ। देखिए, आप किसी को कोई चीज़ दें आधी और आधी अपने पास रख लें, कोई खुश होगा? किसी को आप गिफ्ट दें और वो खोल के देखे, या आपको कोई गिफ्ट दे तो उसने आधी चीज़ आपको दियो, फटी हुई यूज चीज़ दियो, आधी खुद रख ली आधी आपको दी, आप क्या कहेंगे? आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आधा नोट अपने हाथ में रखें और आधा उसको देंगे? पूरे ही देना पड़ता है ना। तो अल्लाह को हाफ हार्टेडली क्यों देते हैं? पूरे दिल से उसकी तरफ आ जाओ, बस जो वो कहेगा उसको मानना है, और जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने तरीका सिखाया उस तरह करोगे। ना इबादात में आगे बढ़ना है, ना तौर तरीकों में आगे बढ़ना है, कोई जिक्र अजकार कोई बात ऐसी कि जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया, और तुम ये सोच के कर लो कि आखिर इसमें हर्ज क्या है, तो वो आपको मुहसिन के दर्जे से आगे ले जाएगा। इसी आयत के साथ कुछ आयतें बातें जो अगली आयत के साथ हम करेंगे, बहुत ही अहम है, इंशाल्लाह ताला अगले रुकू के साथ करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
तिलावत सुनेंगे।
وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون